जय माँ। जीवन में कठिनाई समस्या सबके जीवन में आती है और उसको जब हम लोग बाहर बाहर से देखते हैं तो लगता है क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, मानो हमको विशेष रूप से चुना गया है पिटाई करने के लिए लेकिन शायद चुना गया है किंतु किसी और प्रयोजन से, और चुना गया है ताकि हम अपने, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो एक नई उड़ान भरने के लिए। तो चिड़िया जब पिंजड़ा खुल जाता है तो उसको खतरा रहता है क्योंकि पिंजड़े के अंदर सुरक्षित रहती है, और जब पिंजड़ा खुलता है बाहर निकलती है तो बहुत सारे गिद्ध और पशु भी हैं, और यदि वो ये चैलेंज नहीं लेगी तो कभी आकाश में उड़ भी नहीं पाएगी। तो भविष्य को श्री अरविंद बताते हैं द फ्यूचर ऑलवेज होल्ड्स अ डबल फेस, स्फिंक्स की तरह। अगर आप उसको सही ढंग से लोगे तो आप बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हो, और यदि आप उसके सामने टूट जाओगे तो बिखर जाओगे। ये दोनों बातें एक साथ आती हैं जीवन में, हर किसी के जीवन में आती है। सावित्री के जीवन में जो सबसे प्रिय है वो छिन जाने वाला है, और ये उसी दिन की बात है जब सावित्री उठती है, दिस वॉज द डे वेन सत्यवान मस्ट आई। तो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा दो प्रकार के मनुष्य, एक जो ऐसा नहीं कि साधारण श्रेणी के मनुष्य और असाधारण श्रेणी के मनुष्य कुछ अलग अलग करते हैं, वो उसी चीज को अलग मनोवृत्ति अलग मनोभाव से करते हैं, यही अंतर होता है। साधारण व्यक्ति बिखर जाता है और असाधारण व्यक्ति ना केवल स्वयं को समेटता है, वो उसमें अपने संबल को, अपने ही अंदर की शक्ति को जगाता है। तो सावित्री के जीवन में भी जब ऐसी घड़ी आती है, हम लोगों ने ये लाइन पढ़ी थी बुक 1 कैंटो 2 पेज नंबर 19 पर, इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकोर्स। यहाँ बहुत सुंदर है कि सावित्री कौन है, यहाँ थोड़ा सा उनका परिचय है। ए फोर्स इन हर दैट टॉइल्ड सिंस अर्थ वॉज मेड। सावित्री का परिचय है कि सावित्री केवल आम तौर पे व्यक्ति एक जन्म बस उसको ही देखता है, लेकिन ये तब से इस संसार में युद्ध कर रही हैं अंधकार अचित इन शक्तियों के विरुद्ध जब से पृथ्वी बनी है। और माता जी एक जगह कहती हैं कि आई नेवर लेफ्ट द अर्थ सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से धरती बनी है तब से मैंने पृथ्वी को नहीं छोड़ा है। परस्यूइंग आफ्टर डेथ इमॉर्टल एम्स रिप्यून टू एडमिट frustration's barren role forfeit the meaning of her birth in time obey the government of the casual fact or yield her high destiny up to passing chance। ये उन सब के लिए उत्तर है जो ये समझते हैं कि भारतवर्ष में केवल एक fatalism है कि भाग्य है, हम क्या कर सकते हैं, पर नियति वास्तव में हम लोगों को चैलेंज करती है, और यदि हम अपने अंदर जाएं तो हमारे अंदर वो सारी शक्ति है जो नियति से लड़ सकती है और नियति को परास्त कर सकती है। सारे के सारे अगर आप देखें भारतवर्ष के स्क्रिप्चर्स, हम लोग ये कहते हैं कि कर्म बंधन है, क्या करेंगे हम, हमारे कर्म वैसे थे, जो जीवन में मिला है उसको सफर करना चाहिए। और अगर ये सच में यही सच है तो राम जी ने गलत किया, श्री राम को ही कहना चाहिए था भाई मेरे किस्मत में जानकी माँ नहीं लिखी है तो चले जाती हैं। वही श्री कृष्ण को कहना चाहिए था, अर्जुन सो सॉरी, भाग्य का लिखा तो तू नहीं मिटा सकता, मैं भी नहीं मिटा सकता हूँ, और ये कह के उनको अर्जुन को कहना चाहिए था कि तू रिकनसाइल कर ले, परंतु दोनों ऐसा नहीं करते हैं। दोनों युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, संसार के युद्ध में। अब बैठ जाओ अभिलाष, नो नीड टू बिकॉज इट्स डिस्टर्ब्स टू मच। सो अब यहां से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन हर ओन सेल्फ शी फाउंड हर हाई रिकॉर्ड्स। अब सावित्री अपने ही अंदर उस उत्तर को, उस शक्ति को ढूंढ रही हैं। कुछ लोगों ने सुना होगा सुरेंद्रनाथ जौहर के साथ माता जी का इंटरव्यू, वो कहती हैं कि कहाँ से मुझे ये मिलेगा, ये शक्ति कहाँ से आएगी जो कार्य आपने मुझे सौंपा है। तो माँ कहती, तुमको अपने ही अंदर शक्ति ढूंढनी है। हम लोग क्या करते हैं कि एक, ये अभी बात हो रही थी, रिलेशनशिप की भी यही इशू होती है कि एक टूटता है, हम दूसरे से ढूंढते हैं कि यहाँ से हम, हमारा टैंक, फिर वो तीसरे से, परंतु हमको अपने ही अंदर वो अक्षय अनंत भंडार को ढूंढना है, उसी की बात हो रही है। शी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सॉवरेन राइट, हर सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल। इस दृष्टि से देखें तो पूरा संसार एक जिग्सॉ पजल की तरह है, और ये पजल पहेली हमको क्यों दी गई है, सॉल्व करने के लिए, सबमिट करने के लिए नहीं। तो आप देखें कि खेल में भी दो प्रकार के, एक बच्चे होते हैं ना जो उनको मज़ा नहीं आ रहा है तो वो खेल को, बोर्ड को ही हटा देते हैं, वो तोड़ देते हैं, बिखेर देते हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड्स नहीं है। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ी आपके अंदर संभावना। सो सावित्री अपने ही अंदर उसका सॉल्यूशन ढूंढती हैं, और सॉल्यूशन क्या है, हर सिंगल विल, हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, हमारे एक सीमित विल दी गई है, एक सीमित श्रद्धा दी गई है, एक सीमित थॉट दिया गया है, लेकिन हमको लगता है कि ये तो, इससे हम क्या कर सकते हैं, संसार की तो इतनी सारी शक्तियां हैं। तो यहाँ पर श्री अरविंद माता जी बताते हैं, अगर इस सीमित को हम असीम से जोड़ दें तो उसकी कोई अंत नहीं है संभावना का। आखिर क्या अंतर है अर्जुन और कर्ण में, अनेकों अंतर हैं, लेकिन एक अंतर यह है कि कर्ण अपने ऊपर बहुत विश्वास करता है और उसने स्वयं को दुर्योधन के साथ जोड़ा हुआ है। दुर्योधन, द्रोणाचार्य, भीष्म, इन सब पर विश्वास करता है, लेकिन अर्जुन के लिए केवल अपना बाहुबल और श्री कृष्ण, यही दो हैं जिसमें उसने पूरी तरह अपनी को श्री कृष्ण के प्रति समर्पण किया हुआ है। एक बड़ी सुंदर एक घटना याद आती है, बीच ऑफिस की बात है। एक बार एजुकेशन कैंप चल रहा था और किसी ने कहा कि ये सब बातें ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग तो एक ड्रॉप की समान है उस ओशियन ऑफ डार्कनेस में। तो जो उत्तर दिया उन सज्जन ने बड़ा सुंदर कहा, यस बट ए ड्रॉप ऑफ लाइट। देखिए कितना अंतर है। एक ऐसी कहानी है जिसमें एक व्यक्ति, जो मछलियाँ आ गई थी वॉश आउट होकर के बीच के ऊपर, वो उनको उठा उठा के फेंक रहा था पानी के अंदर। तो कोई जा रहा था, कह रहा था, सिरफिरे हो क्या, तुमको क्या लगता है इससे कुछ अंतर पड़ेगा। तो उसने एक मछली उठाई, समुद्र में फेंकी और कहा, इसको तो पड़ा है। तो अगर हम इस भाव से करें कि चाहे एक भी व्यक्ति, इसलिए श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है कि जिसने किसी एक मनुष्य के प्रति भी कुछ शुभ किया है तो उसका नाम भगवान के रजिस्टर में लिख दिया जाता है, ही शैल सी द फेस ऑफ द इटर्नल। इवन इफ दाउ हैज डन वन, इफ दाउ हैज डन गुड टू वन ह्यूमन बींग, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। लेकिन हम लोग इसी में, हमारे करने से क्या होगा, हम अपने अपने जीवन में बस खुश हैं। तो यहां सावित्री अपने ही अंदर स्ट्रेंथ, शक्ति को ढूंढती हैं। टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज एट द अनसीन्स नॉक अपॉन द हिडन गेट्स, हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग टच। कितनी वीर रस की अल्टीमेट पराकाष्ठा इसमें। अवोक फ्रॉम स्लंबर इनर हार्ट्स रिसेस। अब लाइटनिंग टच क्यों कह रहे हैं, लाइटनिंग में सब समाप्त हो जाता है, एक बार गिरती है, लेकिन कोई चीज है जो फिर भी बची रहती है। यहां उसका है कि हर स्ट्रेंथ रिफ्यूज करती है गिव अप करने को सावित्री, और वही उसकी स्ट्रेंथ है। एट द अनसीन्स नॉक अपॉन द हिडन गेट। जीवन सदैव अनएक्सपेक्टेड से भरा हुआ है, ये मान के चलना चाहिए कि कल क्या होगा, अगले क्षण क्या होगा, हम नहीं जानते। लेकिन हम उसको कैसे फेस करेंगे, ये निर्णय हमारे हाथ में होता है हमेशा। तो यहां उसी की बात है कि सावित्री क्या करती हैं, उस शक्ति को जगाती है अपने अंदर, एवोक फ्रॉम द स्लम्बर ऑफ हर हार्ट्स रिसेस, इट बोर द स्ट्रोक ऑफ दैट विच किल्स एंड सेव्स, दैट विच ए कैपिटल डी टी। जब काली माता सामने खड़ी हो तो क्या करना चाहिए, डर के भागना चाहिए, कहना चाहिए माँ ये भी है, इसको भूल मत जाना, इट स्लेस। क्या स्ले कर रहे हैं, ईगो को, और सेव क्या कर रहे हैं, सोल को। और जो ये चीज जानता है वही पार, जो अपने ईगो को बचाने में लगे रहते हैं और अपने डिजायर सेल्फ को बचाने में लगे रहते हैं, वास्तव में वो हार जाते हैं जीवन से। और जो उस समय खड़े रहते हैं कि ठीक है जो भी हो, नियति का हर स्ट्रोक हम सहेंगे, लेकिन अपने जो हमने निर्णय लिया है उससे हम अडिग रहेंगे, उससे नहीं डिगेंगे। तो यहां उसकी बात है, इट बोर द स्ट्रोक ऑफ दैट विच किल्स एंड सेव्स। इससे बहुत सारी कहानियां किल्स एंड सेव्स, कंस को श्री कृष्ण किल करते हैं, सेव करते हैं। यदि कंस ने पहले ही स्वीकार कर लिया होता तो उसकी नियति बिल्कुल अलग होती। Across the awful march no eye can see, barring its dreadful route no will can change, she faced the engines of the universe. Across the awful march no eye can see, कोई नहीं देख रहा है। किसी के जीवन में हम लोग ऐसे ही ना, उसके जीवन अच्छा ऐसा हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोग शुरू कर देते हैं अपने जीवन को, वो उस व्यक्ति उसको बेयर कर रहा है, कोई और नहीं देख रहा, ये सोचना कि हमारे दुख कोई और शेयर कर रहा है। आपका दुख आपका क्रॉस है, लोग आएंगे थोड़ी देर के लिए शेयर करेंगे, हो सकता है दो शब्द बोलेंगे सांत्वना के, कई बार और बढ़ा जाते हैं लोग, ओ हो आपके जीवन में तो बहुत बुरा हो रहा है, वो तो पता है, आप इसको बोल के इंक्रीज कर रहे हैं मैनी फोल्ड और चले जाते हैं। तो नो आईज कैन सी, शी फेस द इंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, वे शक्तियां जो भाग्य को चलाती हैं, नियति के चक्र को, काल के चक्र को। ए हार्ट स्टूड इन द वे ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स, इट्स जायंट वर्किंग्स पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ ए माइंड, इट्स डार्क कन्वेंशंस मेट द फ्लेम ऑफ ए सोल। श्री अरविंद माता जी के जीवन की घटनाएं, जब हिटलर का मार्च आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो एक दिन अचानक श्री अरविंद, लोग बता रहे हैं हिटलर यहां आ गया है, वहां आ गया, ऐसे आ गया है, अचानक श्री अरविंद कहते हैं वी शैल सी, देखते हैं हम। और देखिए उसके कैसे रिवर्स होने गए लगे फॉर्च्यून्स। वो निर्णय लेता था कि 15 अगस्त को मैं यहाँ बमबारी करूँगा, जिसके बारे में शेरविंद कहते हैं दैट शोज वन ऑफ द साइंस की ही इज, किस तरह की शक्ति है उसके अंदर। लेकिन यूजुअली 15 अगस्त को उसकी फॉर्च्यून्स रिवर्स होती थी, कितने उसके प्लेन डिस्ट्रॉय होते थे, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं, जहाँ वो स्वीकार नहीं करते कि नहीं ऐसा ऐसा ही होना है, नहीं। ए मैजिक लिवरेज सडनली स्कॉट, ये पंक्तियाँ, चार पंक्तियाँ बड़ी कोट होती हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड जरूरी है। स्टार कन्वेंशंस क्या हैं, जीवन की नियति, ऐसा है तो ऐसा होगा, लेकिन आत्म तत्व के अंदर जो अग्नि है, फ्लेम ऑफ ए सोल, वो जिसने जगा ली उसके साथ क्या होता है, यहाँ उसका वर्णन है। ए मैजिक लिवरेज suddenly is caught that moves the veiled ineffables timeless will, a prayer, a master act, a king idea, can link man's strength to a transcendent force, magic leverage, हम सब के अंदर है. कौन सा leverage है? Flame of a soul. Soul के अंदर जो aspiration के रूप में, ये देखिए यही कहानी है अंबा अंबिका अंबालिका की. वो उसने अपने अंदर ये निर्णय लिया कि भीष्म तुमने गलत किया है, अन्याय किया है, तुमको एक न एक दिन इसका न्याय होगा. तो प्रे कर रही है क्या कि मैं इसको भीष्म को मार डालूं. अब कोई कहेगा ये कम ऑन नो मैच. शिव जी आते हैं, प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि क्या चाहिए? भीष्म का विनाश मेरे हाथों, वो भी ये नहीं कहते, ये तो इस जन्म में संभव नहीं है, लेकिन फुलफिल होगा, तुमने तप किया है. और वही अगले जन्म में शिखंडी बन के आती है और आता है, आती है ओके. और भीष्म के विनाश का कारण नहीं बनती है, डायरेक्ट कारण बनती है. तो अब यह और बात है कि उसने अपने अंदर एक और उच्चतर संकल्प लिया होता, द्रौपदी का भी संकल्प. तो ये हमारे यहाँ संकल्प, इन चीज़ों का बहुत महत्व है, जिसको अभी हम लोग भूल गए हैं. संकल्प भूल गए हैं क्योंकि हम लोग केवल डिजायर्स को जानते हैं, डिजायर्स, विशेज, होप्स. वी हैव फॉरगॉटन विल. तो पुराने समय में ये इस बात पर संस्कारों में कैसे इनबिल्ट किया जाता था, हाथ में पानी लेते थे, मंत्र पढ़ते थे, कहते अब आप ये संकल्प लीजिए. मुझे याद है जनेऊ के समय पंडित जी ने कहा अब आप ये संकल्प लीजिए. मैंने कहा नहीं लूंगा मैं ये संकल्प. बोले क्यों? मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा जो आप मुझे कहने वाले हैं. क्या कहने वाले हैं आप? कहने वाले हैं कि सदा सत्य बोलो. बोले अभी तो बोल, अब सब लोग कि भाई जल्दी करो जल्दी करो. मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा. कल को कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां सच बोलना उचित नहीं है तो मैं ऐसे संकल्प कैसे ले सकता हूं? फाइनली वो सब आपके ऊपर प्रेशर आता है. तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा आपको जो बोलना है बोल दीजिए. संकल्प का बहुत बड़ा महत्व होता था. इट्स नॉट, वो संकल्प किसी ने देखा नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने देखा. तो वो संकल्प की शक्ति यहां सावित्री के अंदर, वो मैजिक लिवरेज दैट मूव्स द वेल्ड इनफेबल्स टाइमलेस विल. तो एक जो विल है वो कॉस्मोस के अंदर ऑपरेट करती है, इसको हम नियति कहते हैं. नियति के बहुत सारे धागे ताने बाने जुड़े हुए हैं, आप उसको नहीं हिला सकते हो क्योंकि एक हिस्सा हिलाओगे सब कुछ जो उससे कनेक्टेड है हिलेगा. हमको लगता है कि हमारे जीवन में बस जो घटना हो रही है केवल हमारे जीवन में हो रही है, ये खंड बुद्धि है. लेकिन जो कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है उससे बहुत सारे बिंदु कनेक्टेड हैं, और केवल पास्ट और फ्यूचर नहीं. आप देखिए कोई व्यक्ति जीवन में, मान लीजिए किसी के दुर्घटना हो जाती है, तो उसको जो पीड़ा होती है केवल उसको नहीं है, उसके परिवार के सदस्यों को, उसके आसपास के लोगों को, उसके कार्य क्षेत्र में हर चीज कनेक्टेड है. उन सबके जीवन में वो सिचुएशन आ रही है जिसके थ्रू उनको गुजरना है. अब ये सब इंटरकनेक्टेड है धागे, और ये विश्व के अंदर ये सारे घूम रहे हैं. तो इसको कौन टाल सकता है? इसको केवल विश्व के परे ट्रांसेंडेंट. क्यों? जब वो इसके अंदर अपनी शक्ति को डालते हैं तो वो सब ऑटोमेटिकली अपनी जगह एडजस्ट हो जाता है. इवन गॉड्स नहीं उसको चेंज कर सकते. इसीलिए हम देखें कि देवताओं के पास भी जब मनुष्य जाता है कि हमको ये बदल दीजिए, तो वो कहते नहीं हम ये नहीं कर सकते हैं. उनकी भी अपनी एक लिमिट है. तभी माँ कहती है ग्रेस कैन कंप्लीटली कैंसिल कर्मा. वो शक्ति केवल और केवल ग्रेस के अंदर है. तो इसको वेल ट्रांसेंडेंट्स ineffables टाइमलेस विल, ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन्स स्ट्रेंथ टू ए ट्रांसेंडेंट फोर्स. प्रेयर, कैसी प्रेयर? द्रौपदी प्रे करती है उस समय, उस अवस्था में उसके सामने कुछ भी, कोई विकल्प नहीं बचा है, और वो प्रार्थना नियति को बदल देती है, ना केवल द्रौपदी की पांडवों के कौरवों के विनाश का कारण अल्टीमेटली. श्री अरविंद के साथ एक ड्रीम डायलॉग है निरोधा का, उसमें बताते हैं, कहते हैं कि द्रौपदी को इससे क्यों गुजरना पड़ा. तो वहां श्री अरविंद कहते हैं, ड्रीम डायलॉग है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको एक लेवल तक इसको हम सत्य अनुभूति के रूप में देख सकते हैं. कहते हैं कि कब से मैं तुम्हारी बुद्धि में कुछ सत्य डालने की चेष्टा कर रहा हूं, तुम्हें मालूम नहीं है. उस एक एक्ट के कारण कौरवों की नियति में जो भी कुछ अगर अच्छा लिखा था, उन्होंने अपने विनाश का बीज बो दिया. तो एक प्रार्थना द्रौपदी की, वो पूरे कुरुकुल के विनाश का कारण बन जाती है. मास्टर एक्ट, मास्टर एक्ट में तो मुझे अर्जुन की चीज, मास्टर एक्ट, क्या मास्टर एक्ट किया है. श्री कृष्ण चॉइस दे रहे हैं, एक और अक्षौहिणी सेना है, सब है, क्या लोगे, आप आ जाओ मेरे साथ. अरे तुमने सुना नहीं है, मैंने डिक्लेयर किया है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, काली मैं रथ चलाऊंगा. हाँ हाँ आप आ जाओ, शस्त्र तो मैं उठा लूंगा, शस्त्र की समस्या नहीं है, आप बस मेरे साथ रहो. और देखिए मास्टर, दैट्स द मास्टर एक्ट जो सील कर देती है डेस्टिनी को. एक किंग आइडिया. अब किंग आइडिया क्या होता है, एक सीमित आइडिया क्या होता है कि भाई जैसे निज की मुक्ति. किंग आइडिया क्या है, सारी सृष्टि में, सारे संसार में किंग कौन होता है. किंग बाय हिज नेचर एक किंग ऐसा होता है जो केवल स्वयं तक अपने जीवन को सीमित नहीं करके रखता. कम से कम पुराने समय में, और अभी भी ये चीज हम देखने को मिलती है कि राजा के लिए सारी प्रजा उसकी संतान मानी जाती थी. तो राजा ये नहीं कह सकता कि मुझे अपनी प्रॉब्लम बस सॉल्व करनी है, राजा के लिए सारी प्रजा, सब लोग. तो किंग आइडिया कौन सा है, वो आइडिया जो सारे संसार को बदल दे, वो आइडिया जो हमें बचा ले, वो आइडिया जो हमारे जीवन में थोड़ी सुख ले आए, वो आइडिया जो हमको समृद्धि दे दे, वो आइडिया जो हमको बचा ले इस जंजाल से. दे आर नॉट किंग आइडियाज. किंग आइडिया है जहां व्यक्ति सारी सृष्टि के बारे में विचार करता है, वो आइडिया जो संसार को बदल दे, वो है किंग आइडिया. माता जी ने प्रारंभ किया था ना दो न्यू आइडिया के नाम से, इट्स ए किंग आइडिया. क्योंकि न्यू आइडिया क्या था, न्यू आइडिया था कि इस धरती का रूपांतरण संभव है, जड़ तत्व को दिव्य बन सकता है, दिस इज ए किंग आइडिया. देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल. वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. जो इस तरह से जुड़ जाते हैं भगवान के, जो तीन हैं, एक इंडिविजुअल हम सबके अंदर भगवान है, अंतर्यामी है, तो आप उनसे गाइडेंस लेके जीवन अपना जी सकते हैं. एक है विश्व में, वो विश्व का पूरा संयोजन चल रहा है, कॉस्मिक स्पिरिट, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस. और तीसरे हैं ट्रांसेंडेंट. जो ट्रांसेंडेंट से जुड़ जाता है उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता है. तो वहां पर है कि देन मिरेकल बिकम्स ए कॉमन रूल. जो उसका संकल्प होता है वो भगवान का संकल्प हो जाता है, मतलब चीजें ऐसे चलने लगती है. देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल. वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट. वन माइटी डीड. अमृता पढ़ाई कर रहे थे कलवे कॉलेज में, और चाहते थे उस माता पिता सब पढ़ लिख के अच्छा जॉब करें, शादी ब्याह हो जाए, यही चाहते थे. ये आके श्री अरविंद से मिलने लगे 15 साल की उम्र से. फिर देखिए ये जो घटना हुई उनके जीवन में, वन माइटी डीड. श्री अरविंद को उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स. नहीं तो क्या होती उनकी नियति, एक अच्छे तमिल ब्राह्मण घर में सुंदर से उनके 4-5 छोटे छोटे बच्चे होते, बड़े होते फिर उनके जॉब लगते, बहुत सारे दादा दादी बनते, नातिया उसको फोटो में लगा करके, आर मुदा चारी का परिवार, यही होती है नियति अंत में. लेकिन अब अमृत दा, जस्ट इमेजिन. तो ये माइटी डीड होता है. माइटी डीड इसको क्यों कहा गया है? माने क्योंकि इसमें करेज चाहिए, बहुत करेज, इट्स ए लीप ऑफ फेथ, इसको व्यक्ति नहीं कर सकता बिना करेज के, वो हर चीज के लिए तैयार होता है लेकिन वही नियति को बदल देता है. ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट, अगर हम एक विचार को पकड़ लें, उसको हर समय चलने दें, उसको जीते रहें अपने जीवन में, तो उसमें इतनी शक्ति आती है, पोटेंसी आ जाती है. जैसे एक प्रकाश को हम कंसंट्रेट करते हैं तो वो लेजर बन जाता है, तो वही कंसंट्रेटेड प्रकाश में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके स्किन को चीर करके अंदर जाके सर्जरी कर सकता है, उसके अंदर इतनी सघनता तीव्रता आ जाती है. हम लोग नहीं जानते ये करना, इसीलिए माँ कहती है. माँ से किसी ने पूछा कि माँ हम भी तो विचार करते हैं, हमारे अंदर विल कुछ नहीं होता माँ, क्यों नहीं होता? माँ कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्ट्राडिक्टरी विल्स है. तुमको 5 मिनट को भगवान चाहिए, 5 मिनट को कोई और चाहिए, फिर 5 मिनट कोई और चाहिए, फिर परिवार भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, सब चाहिए. धीरे धीरे भगवान ले आते हैं, जो डेस्टाइंड होते हैं ना उनके जीवन से धीरे धीरे भगवान शुरू कर देते हैं. कौन सा खेल? जिसको मैंने कई बार कहा है, छीन झपट वाला खेल. ये भी छीना, वो भी छीना, ये भी छीना, वो भी छीना, भगवान क्या कर रहे हो आप? अंत में उसके पास क्या विकल्प रहता है? वो किसी के बारे में सोचेगा तो क्या सोचेगा? सब चले गए जीवन से, अब वो क्या सोचेगा? भगवान के ही बारे में सोचेगा, जैसे भी सोचेगा. तो अंत में वो जो लोनली थॉट है उसके अंदर शक्ति, वही विचार, यही अंतर होता है जिसने मंत्र को सिद्ध किया होता है और जो साधारण रूप से मंत्र करते हैं. तो जिसने सिद्ध किया होता है, जब वो उसी मंत्र को कहता है या किसी को देता है, तो उसमें अद्भुत शक्ति होती है. सिद्ध कैसे किया है उसने? उसी मंत्र को वो अपने अंदर रिपीट कर रहा है, जी रहा है, चेष्टा कर रहा है, तो वो सिद्ध हो जाता है. लोनली थॉट बिकम्स ओमनी पोटेंट. देखिए क्या लाइन है अब वर्णन कर रहे हैं श्री अरविंद की. लेकिन अभी मनुष्य को कैसा दिखाई देता है जीवन, क्या दिखाई देता है अभी? अब यहां से नई बात बता रहे हैं, या पुरानी बात जिससे हम सब अवगत हैं. ऑल नाउ सीम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी. लोग कहेंगे ये सब लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट, हम तो नहीं देखते, हम तो देखते हैं कि जीवन में चीज़ें बस वैसी चलती जा रही हैं, उसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है, ये सब बहुत ही आइडियलिस्टिक बातें हैं. तो उनकी बात को श्री अरविंद उठा रहे हैं. ऑल नाउ सीम्स नेचर्स मास्ट मशीनरी एन एंडलेस सर्विट्यूड टू मेटीरियल रूल एंड लॉन्ग डिटर्मिनेशन रिजिड चेन हर फर्म एंड चेंजलेस हैबिट्स एपिंग लॉ. ऐसा है तो ऐसा होगा. कल वाह बहुत अद्भुत बात हुई, नाम नहीं लूंगा, किसी को हृदय में दर्द हुआ, हार्ट अटैक हुआ, डॉक्टर के पास गए, चल के मातृ मंदिर भी गए, सब करते रहे, वो चल रहा था अपनी जगह, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा ब्लड प्रेशर, क्या हो गया 70/60, ओ माय गॉड, आपको तो यहाँ होने नहीं चाहिए था, फटाफट चलो, ये बहुत सीरियस है, सीवियर है. वो कह रहे लेकिन मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है. ये होता है, मैंने देखे हैं पेशेंट्स, क्योंकि आपके अंदर एक श्रद्धा भाव है और आपने डाउट को नहीं आने दिया. वही दूसरा व्यक्ति एम्बुलेंस में बैठ जाता, हूटर बच के जाए, एम्बुलेंस इतनी भयावह है ना, खौफनाक, ऐसा लगता है कि बस ये सीधा अब हमको यमलोक पुरी ले जा रही है. आवाज भी कुछ लगा दो उसमें ओंकार की ध्वनि, कुछ मतलब सुंदर, पता नहीं क्यों वो ऐसे जैसे जाती है ना, लगता है यमराज की गाड़ी जा रही है. आजकल यमराज भी मॉडर्नाइज होके जा रहे हैं, घूम 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 घूम, एकदम सुनने वाला पता नहीं अंदर सुनाई देती कि नहीं, आई डोंट नो, इट इज टेरिफाइंग नॉइज. कम से कम कुछ तो आप ओम ओम करते हुए भी आगे जा सकते हो. But because he did not allow, for whatever reason, spontaneous ek faith jaise hota hai, par main to bilkul theek hoon. Of course, doctor admit karte hai, agle din kehte hai, ki par haan, humko lag raha tha, ye bahut severe hai, lekin itna severe to nahi hai. Cheezein badalti hain. Lekin agar aap isko maan ke, oh my god, kya ho gaya? Arre, ab to bas, next moment, humko bas, aa gaya, hamara samay aa gaya. To वहां पे समस्या होती है. लेकिन ऐसा ही हम सोचते हैं, ऐसा ही दिखता है. एंड एनलेस सर्विट्यूड टू मेटीरियल रूल एंड लॉन्ग डिटर्मिनेशंस रिजिड चेन हर फर्म एंड चेंजलेस हैबिट शेपिंग लॉ. कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप मृत्यु के एक कदम नजदीक आ गए हो. शुगर भी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर भी हो गया है, मतलब आपके साथ डेथ सेंटेंस. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, छुटने रैन जी हमारे मित्र थे, 80s की बात है, जब वो 80 के हम लोग वॉक करते थे नैनीताल में ऊपर नीचे, उनका ब्लड प्रेशर ऐसे जाता था 220 240 ऊपर का, नीचे का 120 140. सबसे पहले जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि छुट्टारायण जी थोड़ा ब्लड प्रेशर आपका हाई. अरे वो रहता है डॉक्टर, वो पहली बार भी हमको देखा थे, कभी कभी हमको दवाई दे देते हैं बड़े कैजुअली, हम भी कभी कभी ले लेते हैं. मैंने कहा ठीक है आपके साथ. फिर एक बार किसी और डॉक्टर ने देखी, मुझे कहा छुट्टा रहने का ब्लड प्रेशर, मैंने कहा कुछ मत करो, चिंता मत, ये ब्लड प्रेशर उनका है, ये फ्लक्चुएशन 40-45 की उम्र से चल रहा है, अभी वो 80 के हैं, तुम कुछ मत डालो, गड़बड़ करोगे उनके. डॉक्टर आनंद थे उनका, और एक्चुअली एंड ही लेफ्ट हिज बॉडी बाय हिमसेल्फ एक्चुअली, पर था ब्लड प्रेशर उनका ऐसे ही रहता था. अब इसको, ये चीजें अगर आप किसी को बोलोगे, इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो जो एक और है, मशीनरी चल रही है, लेकिन अगर आपको विश्वास है मशीन में तो करो. मेरे पास लोग बोलते हैं कि भाई मेरा देखिए थोड़ा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया. अरे भाई 160 का 190 250 कुछ नहीं होता है. लेकिन अब कन्वेंशनल तो यही है कि भाई इसको ये दवाई दे दो वो दवाई. फिर पूछते दवाई लूं क्या, मैं कहता भैया तुमको दवाई डॉक्टर में विश्वास है ले लो, क्योंकि जिधर विश्वास उधर. तो ये सेकंड ओपिनियन वाला खेल नहीं है, ये तो है कि भाई हमने उस चीज को, अगर है आपके अंदर तो है, नहीं तो गो थ्रू द प्रोसेस. अगर आप डॉक्टर के चौखट तक पहुंच गए हो, प्रवेश कर लिया है, कंसल्ट करने बैठ गए हो, तो आप चक्रव्यूह के प्रथम दुर्ग के अंदर चले गए हो. उसके बाद ये सब हेजिटेट करना, नहीं गए तो ठीक. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं जाना चाहिए, अच्छे लोग होते हैं डॉक्टर लोग. लेकिन वो कभी कभी अंधविश्वास की तरह विश्वास करने लगते हैं अपनी ही साइंस पर. ये बस समस्या है, अंधविश्वास की तरह कि नहीं जो कुछ हमें लिखा है किताब में वो बिल्कुल सही है, बस वही थोड़ी समस्या है. वरना अच्छे लोग होते हैं, मिलना चाहिए, दे आर गुड पीपल. हाँ, हर एम्पायर ऑफ अनकॉन्शियस डेफ डिवाइस एनल द क्लेम ऑफ मैंस फ्री विल. शरीर तो एक अनकॉन्शियसली चलता रहता है मशीन की तरह. मशीन के ऊपर आपकी विल का क्या लेना देना, कंप्यूटर के अंदर क्या आपकी विल काम करेगी, नहीं काम करेगी. कंप्यूटर के ऊपर आपकी विल नहीं काम करेगी, ऐसा लोगों का सोचना है. माता जी के पास एक बार लाया गया था कंप्यूटर, जब पहला कंप्यूटर था, तो वो काम ही नहीं करे. फिर बड़ी मुश्किल से कुछ देर बाद माँ ने कहा अच्छा आप ट्राई करो, तो ट्राई करो, स्टार्ट हो गया. कहा माँ ये क्या किया, मैं देख रही थी कि मशीन रिस्पॉन्ड करती कि नहीं ह्यूमन विल को. तो कहती वो तो रिस्पॉन्ड करती है. तो माँ कहती वो तो रिस्पॉन्ड करती है. और देखिए मैंने तो एक्चुअली, मैं वैसे ह्यूमरसली कल मुझे किसी ने याद दिला रहे थे, मेरा एक स्कूटर होता था बहुत वर्षों तक चला, तो स्कूटर को मैंने नाम भी दिया हुआ था टॉडी. उसके साथ मैं बड़े प्यार से डील करता था, तो उससे मेरा एक संबंध जुड़ गया था. अब एयरफोर्स में थे और कोई नहीं, चलो स्कूटर से दोस्ती कर लो और भी. तो एक दिन जा रहे हम, तो स्टार्ट नहीं हो रहा, जाना था स्टडी सर्किल के लिए. तो मैंने कहा देख भाई टॉडी, बहुत दिन मैंने तुझे नेग्लेक्ट किया है, पर अभी चल ले, अभी ज़रूरी है. टॉक है मेरी और थोड़ा स्टडी सर्किल है, फिर क्या स्टार्ट हो गया, चला गया। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे ले जाऊंगा वर्कशॉप, हाँ दिखाऊंगा, भूल गया मैं। अगले दिन फिर बाद में वो इतना अच्छी रैपो हो गई थी कि इट रियली रिस्पॉन्डेड, इट यूज टू रिस्पॉन्ड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये स्कूटर, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट, इन सबके अंदर एक चेतना होती है। तो ये तो लिविंग सेल है, ये तो फिर भी काफी आगे की चीज है। और इसी चीज को आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस ब्रांच आई है जो शेयरविंद की इस बात की पुष्टि करती है, क्योंकि कुछ लोग जो विज्ञान की उसमें, उसका नाम है एपिजेनेटिक्स। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये नई चीज है। हम लोग सुनते थे जो आप हो तो आपकी जीन्स हैं। एपिजेनेटिक्स कहती है नहीं, आपके थॉट, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी आंतरिक अवस्था का जीन्स पे असर पड़ सकता है। वो एक्सप्रेशन, वो जीन्स को नहीं बदलेगी लेकिन जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसकी पूरी मैकेनिज्म स्टडी की है साइंटिस्ट ने। एपिजेनेटिक्स बहुत अपकमिंग फील्ड है। अब तक हम सोचते थे हम दास हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहां उसकी बात हो रही है, लेकिन पहले श्री अरविंद हम लोगों को बता रहे साइंटिफिक पोजीशन मेटीरियल साइंटिस्ट की, कि एनल द क्लेम ऑफ मैंस फ्री ह्यूमन विल, ही टू इज ए मशीन अमिड मशीन्स, ए पिस्टन ब्रेन पंप्स आउट द शेप्स ऑफ थॉट। ब्रेन है भाई, उसमें जो थॉट आएंगे, थॉट कंट्रोल, थॉट मैनेजमेंट, ये तो कुछ होता नहीं है विज्ञान में, वो तो अपने आप आते हैं। आप थॉट की फैक्ट्री को कुछ नहीं कर सकते। दिस इज हाउ दी साइंटिस्ट विल टेल अस। आपको आश्चर्य होगा सुन के, हम लोग तो प्रारंभ वहीं से करते हैं। आप विचारों को कैसे साधोगे, हाउ विल यू मास्टर योर थॉट। पूरा ईस्टर्न विज्ञान, तो पूरा योग का विज्ञान वहां से प्रारंभ होता है, जहां वेस्टर्न विज्ञान बंद समाप्त हो जाता है। कहां समाप्त होता है? ब्रेन की मशीनरी के साथ। लेकिन थॉट मास्टरी ये पूरा ईस्टर्न विज्ञान का की देन है। ए बीटिंग हार्ट कट्स आउट इमोशंस मोड्स, एन इनसेंशियंस एनर्जी फैब्रिकेट्स ए सोल। एक वैज्ञानिक से आप पूछोगे वो कहेगा सोल कुछ नहीं होती है, अंदर में वो सारा खेल जो है वो ऊर्जाओं का खेल है, वो एक पीनियल ग्लैंड पर थोड़ा धक धक करती है और आपको लगता है कि आपको आत्मज्ञान हो रहा है, वो इस तरह से। और हमारे बहुत से लोग हैं जो इसको बहुत, हाँ देखो उन्होंने डिस्कवर किया ना सोल होती है पीनियल ग्लैंड के अंदर। ऐसी सोल तो ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि मतलब वो भी एक ग्लैंड है। तो ये इस प्रकार से मेटीरियल साइंस देखती है चीजों को। और द फिगर ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द साइंस ऑफ ए टाइड चांस रिपीटिंग हर ओल्ड स्टेप्स इन सर्कल्स अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट। सो जितनी भी ये विचारधाराएं हैं कि अगर तुम देखो तो कल ये घटना हुई, आज ये क्यों हो गई, अचानक हो गई, कोई मतलब नहीं था होने का, तो ऐसा लगता है कि चांस इवेंट्स जो जीवन में एक के बाद एक होते चले जा रहे हैं। तो ये क्यों शेरविन दिख रहे हैं? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कहता है हमको जीवन का मीनिंग चाहिए, नाउ ये इंटरेस्टिंग है, मीनिंग और पर्पस विज्ञान आपको नहीं दे सकता है, ना जड़ विज्ञान दे सकता है, ना जड़ विज्ञान पर आधारित मनोविज्ञान दे सकता है, जड़ विज्ञान पर आधारित, क्योंकि मीनिंग पर्पस है ही नहीं सृष्टि के अंदर। जब सृष्टि के अंदर मीनिंग और पर्पस नहीं है अकॉर्डिंग टू देम, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है, तो आपका व्यक्तिगत मीनिंग पर्पस, तो इस तरह की फिलॉसफी जो कहती है ये आपकी धारणा है, आप कोई भी धारणा पकड़ लो, वास्तव में मीनिंग पर्पस कुछ होता नहीं है, आप तसल्ली के लिए एक मायने दे देते हो। तो यहां पर उस विचारधारा को भी शेरविंद कि ऐसा लोग कहते हैं कि ये केवल एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, रैंडम हैं, टू विच रीजन लेंड्स ए रैंडम सीरीज ऑफ इनेप्ट इवेंट्स, टू विच रीजन लेंड्स इल्यूसिव सेंस इज हियर। रीजन कैसे कहता है, अरे अचानक उस व्यक्ति को यह हो गया, बीमार पड़ गया, तो अब कितने तरह के रीजन आ सकते हैं। खलील जिब्रान की एक कहानी है कि बच्चे को बुखार हुआ, मृत्यु हो गई, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या हो गया, डॉक्टर कहता है छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनके कारण बुखार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। तो एक पंडित के पास गया, क्या हो गया, कहते हैं भगवान की मर्जी, भगवान अनंत है, उनकी मर्जी से ये हो गया। तो कहता है कि वो इन्फिनिटेसिमल और इन्फिनिट के बीच में कोई तो मेरे बच्चे को ले गया, लेकिन मुझे पता नहीं कौन और कैसे हुआ। तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि प्रोसेसेस हैं बहुत सारी, रीजन नहीं जानता है तो वो एक सेंस दे देता है कि कोई ना कोई कारण दे देता है, टू विच रीजन लेंड्स इल्यूसिव सेंस इज हियर। इल्यूसिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिसका कोई आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते। और द एम्पेरिक लाइफ्स इंस्टिंक्टिव सर्च और ए वास्ट इग्नोरेंट माइंड्स कोलोसल वर्क। जीवन को देख के बाहर से देखें तो ऐसा लगता है कि कोई पता नहीं किसी ने अज्ञान में सारे संसार की रचना कर दी है, सोते सोते भगवान ने इस दुस्वप्न देख रहे हैं और उसका नतीजा हम सब हैं। एक दृष्टि है, अगर हम संसार को बाहर से सतह से देखें तो ऐसा ही प्रतीत होता है। अब आगे, बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन, ये एक दृष्टि है। अब इस दृष्टि को शेरविंद कंट्रास्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले बताया लेकिन कि इसको जगह जगह ये चीज आएगी कि जीवन को देखने की एक सतही दृष्टि है, एक डीपर दृष्टि है, और दोनों को वो जोड़ते भी हैं शेरविंद जगह जगह। तो एक सतही दृष्टि है, चीजें अपने आप हो रही हैं, चांस है, रैंडम है, हम कहते हैं कि इस कारण उस कारण, दिल को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन वास्तव में ये तो प्रकृति है, इसमें यही है, यही होता रहा है, यही हो रहा है, यही होगा। लेकिन विजडम आती है, शेरविन कहते हैं एक विजडम है जो इन चीजों को अलग ढंग से देखती है। बट विजडम कम्स एंड विजन ग्रोज विद इन, देन नेचर्स इंस्ट्रूमेंट क्राउन्स हिमसेल्फ हर किंग, ही फील्स हिज विटनेसिंग सेल्फ एंड कॉन्शियस पावर, हिज सोल स्टेप्स बैक एंड सीज द लाइट सुप्रीम। लेकिन एक समय आता है जब सोल स्टेप बैक करती है, अवेकन होती, जागती है, अभी तक वो प्रकृति के दास के रूप में जी रही है, केवल कंसेंट देती रहती है, सिग्नेचर करती रहती है जो हो रहा है, वीक असेंट, वो पहले हमने पढ़ा है, नियति की हर गति के ऊपर वो कंसेंट दे रही है। लेकिन एक समय आता है जब वो कहती है नहीं, मैं तो ऐसे फाइल पर दस्तखत नहीं करूँगा, मुझे तो पढ़नी है कौन सी फाइल है, क्या हो रहा है। ये किंग करता है, जो मूक वधिर राजा नहीं होता, जो राजा चीज़ों को देख करके समझ करके, तो वही जो इंस्ट्रूमेंट है प्रकृति का, इंस्ट्रूमेंट की तरह घूम रहा है, वही अचानक जागृत हो जाता है। और तब क्या होता है, ए गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन। ये मशीन है लेकिन ये किसकी मशीन है, ये मशीन हमारी मशीन है, हमारी ईगो की नहीं, हमारी सोल की, भगवान की मशीन है, ये भगवान का रथ है। इसी तरह से वर्णन आता है हमारे उपनिषद में, भगवद गीता में, कि ये रथ है, शरीर क्या है, रथ है, लेकिन इस रथ के अंदर एक रथी भी है, सारथी भी है, लगाम भी है। ये टोटल डिस्क्रिप्शन जो विज्ञान हमको नहीं देता, विज्ञान कहता है ये गाड़ी है, चल रही है, इसकी गारंटी, कई बार लोग कहते हैं बिना इतने दिन की गारंटी है, चल गई, बहुत खिंच गई, लेकिन इसके अंदर कोई यात्रा कर रहा है, और शुरू में वो सोता सोता यात्रा कर रहा है, लेकिन जब वो जागता है तो पूछता है गाड़ी कहाँ जा रही है, ड्राइवर कहता है मैं अपनी मर्जी से चला रहा हूं, तो पूछता है तू ओनर है कि मैं ओनर हूं। सर इसीलिए जब आओ आप चेन्नई टू पांडिचेरी ना, पूछ लेना कि इस रूट से लाइट ले आ रहे हो, तो नहीं तो आप बैठ गए, ड्राइवर चला रहा है। तो पहले तो अवस्था इंसान की ही होती है ना, बहुत थका हुआ है, कोई भी ट्रेन दिख रही है जाके सो गया, उसके बारे में तो कहानी भी है कि एक व्यक्ति सो गया, सुबह उठ के पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अपने पड़ोसी जो ट्रेन में सफ़र कर रहा था, उसने कहा जी मैं तो अमृतसर जा रहा हूँ। कहता अच्छा, विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है। कहा क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो, बोले मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। चमत्कार देखो कि एक बर्थ अमृतसर जा रही है, एक बर्थ कलकत्ता जा रही है, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है। ये कब होता है, जब हम बिना जाने बैठ गए, भेड़ चाल, सब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। So, लेकिन एक समय आता है जब प्रश्न करते हो, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ मैं जा रहा हूं, अरे हमारे पापा ने ऐसा बोला था, पापा ने बोला होगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, आज के युग में लोग प्रश्न कर रहे हैं, वेरी गुड, क्योंकि उनको जो उत्तर समाज ने अब तक दिए थे और रीजन ने दिए थे वो एडिक्वेट नहीं है। ये बहुत, आप 100 वर्ष पूर्व देखिए, ये सब उत्तर हम लोगों ने मान लिए थे, क्यों हो रहा है, कर्मिक लॉ है, क्यों हो रहा है, समाज कह रहा है, क्यों हो रहा है, माता पिता ने सिखाया है। अब वो कोलैप्स हो गया, रीजन के उत्तर, अब उनको इंट्यूटिव, अब इवोल्यूशन होगा ना, तो उत्तरों पे प्रश्न किए जा रहे हैं। तो ये जब हम प्रश्न उठाते हैं तो एक नया सत्य सामने प्रकट होता है, और सावित्री के अंदर वही सत्य प्रकट हो गया है। दिस ट्रुथ ब्रोक इन ए ट्रायम्फ ऑफ फायर, जो अग्नि अंदर में थी वो अचानक एक प्रकाश को मिलती है और अचानक एक नया सत्य इंट्यूटिवली अंदर में प्रकट होता है। और क्या सत्य है वो, ए विक्ट्री वॉज वन फॉर गॉड इन मैन, द डेटी रिवील्ड इट्स हिडन फेस। वो जो छिपा हुआ था, अचानक वो अग्नि की सर्च चल रही थी, आप आग को लेके जा रहे अंधेरे में, अचानक आप एक गुफा में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि साक्षात अमरनाथ का शिवलिंग है और वहां पर आप शिव के दर्शन कर रहे हैं। तो ये वो ट्रुथ हम सबके अंदर जो बंद है, हमको उसको ढूंढना चाहिए। ढूंढ के हम क्या पाते हैं, द ग्रेट वर्ल्ड मदर नाउ इन हर एरोज, लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न, अफर्म द स्पिरिट्स ट्रेड ऑन सर्कमस्टेंस, प्रेस्ड बैक द सेंसलेस डायर रिवॉल्विंग व्हील एंड स्टॉप द म्यूट मार्च ऑफ नेसेसिटी। माने एक जगह किसी साधक को भी बताया है, कहता मुझे ये लगता है, वो लगता है यमदूत आ रहे हैं। तो माने कहा, यू टेल योर मदर चाइल्ड, नोबडी हैज राइट ओवर यू। तो फिर उन्होंने उनकी उनकी वाइफ के साथ ही हो रहा था, उन्होंने कहा माँ उसको रोज यमदूत दिखाई देते, पति नहीं मतलब एक्चुअली यमदूत so, मैं क्या करूँ। तो कहते जाके उसको बोलो, नेक्स्ट टाइम जब दिखाई दे तो कहना मैं माँ की बच्ची हूं, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट टाइम जब वो बोले लगी मुझे यमदूत दिखाई दे रहे, कहा बोलो उनको, उन्होंने बोला। द ब्यूटी इज, ये घटना डॉक्यूमेंटेड है, आई थिंक KRC निवास आयंगर की कहानी है जिन्होंने श्री अरविंद बायोग्राफी लिखी, कहते एकदम समाप्त हो गए। ये होती ना शक्ति, तभी तो माने वो मंत्र दिया था। अब वो मंत्र लोग मैकेनिकली करते हैं, इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर, बार बार कर रहे हैं, ये नहीं जरूरत है। एक बार आपको इतना पूरा याद करने की भी जरूरत नहीं है। आई हैव एक्चुअली सीन द पावर ऑफ दिस मंत्र। कोई चीज है जो आपके सामने एकदम खड़ी है, आप केवल एक बार कहना है, इन द नेम ऑफ द मदर आई आस्क यू टू गेट आउट फ्रॉम हियर। आपको यू डोंट हैव टू रिमेंबर, इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर बाय द विल ऑफ द मदर आई, ये इज नॉट नीडेड। माँ का नाम काफी है। अनुभव, ये कई लोगों के अनुभव हुए, मेरे भी हुए हैं, एकदम ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि अब आपके ऊपर एक भयंकर अटैक होने वाला है माफिया के लोगों से, और लोग सब आपको एडवाइस देते हैं ना, क्या क्या आप जाते हो समाधि पर, मां स्टॉप दिस, और एकदम अंदर में पहले एक चीज आती है कि एज इफ मदर हैज पुट हर हैंड एंड एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्स, इट्स अनइमेजिनेबल। वो शक्ति है हमारे अंदर डिवाइन मदर की। तो वो क्या करती है, अफर्म द स्पिरिट्स ट्रेड ऑन सर्कमस्टेंस, प्रेस्ड बैक द सेंसलेस डायर रिवॉल्विंग व्हील एंड स्टॉप द म्यूट मार्च ऑफ नेसेसिटी। ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स। अब ये चार पंक्तियां सावित्री का वर्णन है, जब कोई डिवाइन मदर को जाग जाती हैं पूरी तरह। ये होता है माता का जागरण, वो नहीं कि रात को बैठ के ढोलकी पीट रहे हैं और व्रत उपास रख के प्राण तत्वों को बुला के अपने पास कि भाई माता का जागरण हो रहा है, माता की चौकी चौकी यहां है, इसको जगा के दिखाओ, हिल जाओगे, उसमें डिस्क्रिप्शन है। वो नहीं हिस्टेरिकल रूप में नहीं हिलोगे, वो अंदर में, बहुत अंदर में स्थिरता शक्ति शांति चाहिए। वन कैन नॉट, वो तो इट्स ए ग्रेट ट्रेमेंडस, लेकिन एक बार वो जाग जाती हैं तो मृत्यु सरकमस्टेंसेस कोई चीज ऐसी नहीं है जो विपदा जो आपके सामने यील्ड नहीं करेगी। ये नहीं कि इसलिए हमको ये करना चाहिए, पर वो स्पॉन्टेनियस होता है क्योंकि उस व्यक्ति के साथ भगवान हर समय चल रहे हैं। तो ये डिवाइन मदर हैज वोकेन अप इन सावित्री, ये उस दिन का वर्णन है ना सुबह सुबह का। तो जब डिवाइन मदर उठती हैं तो कौन जागता है उनके अंदर, स्वयं जगत जननी। अब वो वर्णन है फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स, कौन है वो? वो तो भगवान की शाश्वत योद्धा है। Empowered to force the door denied and closed, उनके पास mandate है, नियति के द्वार को खोल के बदल सकती हो तुम। ये माँ को कई बार लोग कहते हैं कि हम रूपांतरण के लिए मदर मतलब एनी मदर, नो, शी इज एम्पावर्ड। यू कैन प्रे टू यूनिवर्सल मदर और सुरक्षा सब मिलेगी आपको, प्रोटेक्शन सब, लेकिन रूपांतरण का मैंडेट केवल और केवल इस रूप के साथ है, एम्पावर्ड। इसीलिए ये बात आती है एम्पावर्ड, वो इसको लेके है। श्री अरविंद स्वयं कह रहे हैं कि इफ यू वांट द ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव टू टर्न टू द मदर, मैंडेट उनको मिला है, वो रोक नहीं रहे हैं कहीं जाने से, आपको जहां जाना है जाइए, पर रूपांतरण के लिए यू हैव टू कम टू द डिवाइन मदर एम्बॉडीड इन दिस फॉर्म एंड नेम। सो एम्पावर्ड, भगवान का ही संकल्प को लेकर उतरी है, एम्पावर्ड टू फोर्स द डोर डिनाइड एंड क्लोज्ड, स्मोट फ्रॉम डेथ्स विसाज इट्स डम्ब एब्सोल्यूट। क्या लाइन है, स्मोट फ्रॉम डेथ्स विसाज। सोचिए आप, हाथ बढ़ा के उन्होंने मृत्यु के मुखौटे को ही छीर दिया, कौन हो तुम, सोचिए आप। यम है हम, अरे कहां के, वो मुखौटा हटा के वो देखते ना कि उसके अंदर कौन छिपे थे, भगवान कहते इसके अंदर भी तो भगवान ही छिपे थे, वो लास्ट में आते हैं ना बुक 11 में, शी लिटरली डज दैट। स्मोट फ्रॉम डेथ्स विसाज इट्स डम्ब एब्सोल्यूट एंड बर्स्ट द बाउंड्स ऑफ कॉन्शियसनेस एंड टाइम। यहां डम्ब वर्ड यूज किया है, डम्ब कई जगहों पर सावित्री में आता है, डम वो कुछ कहता नहीं है पर करता चला जाता है जैसी नियति के अनुसार। डेथ आपसे कोई वार्तालाप नहीं करती है, सावित्री के साथ करती, नचिकेता के साथ, अदरवाइज वो तो अपना काम करके, आप रो रहे रोते रहिए, आप ये दूसरे देवताओं का काम है। आप अगर बोलेंगे डेथ के पास देखो मैं कितना रो रहा हूं, आपको दया नहीं, 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 वो दया वाला डिपार्टमेंट अलग है, वो देवता आएंगे, आप बोलोगे मेरे ऊपर पीड़ा हाथ, तो मैं समझ रहा हूं तुम्हें, तो थोड़ी करुणा शांत कर दूंगा। पर मृत्यु को बदलना, मृत्यु के मुख से जाकर के ये सावित्री वो मैंडेट लेकर के आई है। ये अंतिम चार पंक्तियों के साथ रुकेंगे यहां पर, द इशू बुक 1 कैंटो 2 समाप्त हो रहा है। ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स एम्पावर्ड टू फोर्स द डोर denied and closed, smote from death's visage its dumb absolute and burst the bounds of consciousness and time. End of canto 2.